आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिजिक्स और टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। इस टॉपिक पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर वंचना सिंह जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्क एनर्जी एंड पावर। दिस इज चैप्टर 6 ऑफ मॉड्यूल 1 एंड नाउ वी कीप हियरिंग दिस वर्ड वर्क। लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग इन फिजिक्स, व्हाट एग्जैक्टली दिस वर्क मीन्स। सो व्हेनेवर we say that throughout the day I have been working, right? So we need to see what is this work in terms of physics. This work has a definite meaning. When we say that there is some work done, it means there is some force and that force is giving some displacement. So suppose I have a car in my hand, it's a toy car, एक खिलौना गाड़ी है हमारे पास और अब हम इस खिलौना गाड़ी को कुछ फोर्स लगा के यानी कि बल लगा के इस खिलौना गाड़ी को आगे की दिशा में धकेल रहे हैं। We are moving it in the forward direction. अब हमारी गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गई। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो गाड़ी हमारी आगे मूव की है उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है जिसे हम विस्थापन के नाम से भी जानते हैं। अब जो फोर्स हमने लगाया है उस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी हमारे पास आएगी वो वर्क है। सो टू डिफाइन वर्क, दिस वर्क डन बाय अ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विथ the displacement. Whenever we are applying the force, if the displacement is in the direction of the force, then the work done is simply force and the product of displacement, which means I have to simply multiply the value of force with the value of displacement. That is only possible when the force and the displacement are in the same direction. But if I am not applying the force in the direction of displacement, jaisa ki agar hum ek block le le aur us block ko rassi se bandh de, right? Aur rassi se bandhne ke baad ab hum block ko rassi se khinchna shuru kare, lekin rassi ne block kyunki ek समतल जमीन पर रखा है, उस समतल के साथ ब्लॉक के ऊपर जो रस्सी बंधी है उस पर फोर्स लगा रहे हैं हम थीटा एंगल पर। तो अब जो फोर्स की दिशा है वो रस्सी के डायरेक्शन में है और जो रस्सी है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के रखी है। तो अब यहाँ पर जो वर्क डन हम निकालेंगे वो वर्क डन में हमें फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नहीं है। ऐसे केस में वर्क का फॉर्मूला हो जाता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ये थीटा वो एंगल है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। तो अगर इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू एस डी कॉस थीटा। और अगर इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो वर्क बन जाता है वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में अगर इसी चीज को एक्सप्लेन करें तो जो बल है उसको विस्थापन से गुणा करने पर हमारे पास कार्य आ जाता है। बल और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन जो वर्क हमने निकाला है वो अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी। अगर किसी फोर्स को अप्लाई करने के बाद कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि जब हम वर्क को लिखते हैं एफ डॉट डी where f is a vector quantity and d is also a vector quantity, and this dot is representing a dot product. So if d, the displacement, is zero, net work done is equal to zero. For example, if you start pushing the wall of a room, अगर आप कमरे में खड़े होकर कमरे की दीवार को पुश करना शुरू कर दें, तो आप कितना भी फोर्स लगाएं, आप फोर्स लगा रहे हैं दीवार को आगे ले जाने के लिए, मगर दीवार में कोई चेंज नहीं है, मतलब दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर वर्क डन जीरो हो गया, आपका कार्य यहाँ पर जीरो हो गया। तो जब भी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, we have to see what is the force, what is the displacement, and what is the direction of the force with respect to the displacement. And we measure that angle and take cos of that angle. So the work done is equal to f d cos theta. The work done is a scalar quantity. Even though force and displacement are vector quantities, but work done is a scalar quantity. हिंदी में कहें तो work, जैसे कि कार्य कहते हैं, एक अदिश राशि है, जबकि बल और विस्थापन सदिश राशियां हैं. Work की SI unit joule है. This joule is nothing but when force is measured in newtons and displacement is measured in meters, then 1 newton into 1 meter is equal to 1 joule. So 1 joule is defined as the work done by a force of 1 newton when it produces a displacement by 1 meter. So the SI unit of work is joule. Yani ki joule work ka matrak hai. Usko measure karne ka quantity hai. अगर हम डिमेंशनल फॉर्मूला देखें वर्क का, तो डिमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला डालना पड़ेगा और डिस्टेंस का भी डिमेंशनल फॉर्मूला डालना पड़ेगा. तो वर्क क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, इसलिए फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस का डिमेंशनल फॉर्मूला है एल, तो ये बन गया एम एल टू टी माइनस टू. So the dimensional formula of work is m l raised to the power 2 and t raised to the power minus 2. Whenever we are making some electrical measurements, then one of the commonly used unit for work is kilowatt hour. Kilowatt hour is the unit which is commonly used while billing our electricity consumption. जो घर में हम बिजली की खपत कर रहे हैं या जो इंडस्ट्रीज में बिजली की खपत कर रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होती है वो जूल की जगह, क्योंकि जूल एक छोटी यूनिट है, उसकी जगह किलोवाट आर, ये यूनिट वर्क के लिए यूज होती है. 1 kilowatt hour इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10^6 जूल. तो ये किलोवाट आर एक बड़ी यूनिट है जो कॉमनली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बिल्स में हम किलोवाट आर के हिसाब से अपना बिल देते हैं. एक छोटी सी प्रॉब्लम लेकर हम वर्क की कैलकुलेशन को समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. सो द फोर्स ओवर हियर इज 6 न्यूटन and the angle theta is 60 degrees. You have to calculate the work done in moving the object by a distance of 2 meters in the horizontal direction. So if we look at this numerical, what we see is that the work done is the product of f, d and cos theta. So when we look at the value of f, it is 6 newtons, the displacement is 2 meters, and theta is 60 degrees, so 6 multiplied by 2 multiplied by cos of 60 degrees. जब आप value डालेंगे, तो force की value 6 है, displacement 2 है, और cos 60 degree की value 1/2 है. तो आपका answer 6 joules nikal ke aayega. So this way you can solve the numericals by making use of the formula for work, which is equal to F D cos theta. Whenever we look at this work, which is the dot product of F and D, if F and D are in the same direction, then cos theta is zero. Work done in that case is positive if the displacement is opposite to the direction of the force. In that case, work done comes out to be negative. For example, suppose when you are accelerating the car, when you are sitting in the car and you are accelerating the car, by applying the acceleration, you are giving force to the car and the car is moving in the forward direction. So the direction of the force and the displacement are the same. In that case, the work done is positive. But if you are applying brakes to the car, in that case, you are giving deceleration, which means that now the direction of the force is opposite to the displacement. Even though the car is moving forward, by applying brakes, you are decreasing the speed of the car and soon the car will come to rest. So the direction of the force is opposite to the direction of the displacement. So the work done in this case is going to be negative. In fact, with the value of theta, we can just see whenever the theta value, that is the angle between force and displacement, is between 90 degree to 270 degree, in that case, the work done will always be negative. If the angle theta between the force and the distance is either 0 to 90 or 270 to 360 degree, then the work done is going to be positive. अगर इसे हिंदी में समझना चाहें तो ये जो कार्य है ये आपका ऋणात्मक और साथ ही में धनात्मक हो सकता है. धनात्मक कार्य का मतलब आपका बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, यानी थीटा जीरो डिग्री है या जीरो से नब्बे के बीच में है, ताकि वर्क डन जब आप निकालें, कार्य जब आप निकालें, तो बल विस्थापन इन दोनों का प्रोडक्ट के साथ, इन दोनों को गुणा करने के साथ कॉस ऑफ थीटा को भी गुणा करेंगे. ऋणात्मक कार्य तब होगा जब आपका बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में लगे, जैसा कि गाड़ी को रोकने के केस में किया जाता है. तो जब हम ब्रेक लगा रहे हैं, जब ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गति की विपरीत दिशा में बल लगता है और इसी से धीरे धीरे आपकी कार की चाल कम होने लगती है और अंततः गतवा ये रुक जाती है. इस दशा में कार्य ऋणात्मक होता है. सो वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्क डन बाय द फोर्स सच दैट इन वन केस इट इज पॉजिटिव and in other case when you are deaccelerating the car it is negative. Now let's look at the force of gravity. Let us calculate the work done by the force of gravity. So suppose I have a small block whose mass is m, and now from the ground I am lifting this block to a certain height h. So if I look at the force in this case, the force is trying to pull the block down. It's the force of gravity. So the direction of the force is downwards and the displacement is upwards, because from the ground I am lifting the object, the mass, to a certain height h. So the force is m into g, because g is acceleration due to gravity. The displacement is the height h, which you have done to raise the object to the certain height. And the angle theta is 180 degree now, because the force and the displacement are anti-parallel to each other. एक बार इस बात को दोबारा से समझते हैं हम, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, जो आपकी अर्थ के द्वारा, धरती के द्वारा जो गुरुत्वीय बल है, हम उसकी बात करें और हम एक भार लें और उस भार को जमीन से उठाकर एक ऊंचाई h तक रखा जाए, तो इस पूरे प्रोसेस में जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया, जो विस्थापन हमने किया, वो h है, और जो फोर्स या जो बल उस पर लग रहा है वो मास गुणा g के बराबर है। ये जो गुरुत्वीय बल है इसकी दिशा नीचे की ओर है, जबकि जो विस्थापन है वो ऊपर की ओर है, इसलिए गुरुत्वीय बल और विस्थापन के बीच में जो आपका एंगल है वो 180 डिग्री है। और जब आप इसके लिए कार्य अपना निकालेंगे तो विपरीत दिशा में होने की वजह से cos 180 डिग्री माइनस 1 है, और इसलिए आपका जो बल कार्य है वो माइनस mgh निकल के आएगा। सो आई होप आर लिसनर्स आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेनेवर वी आर लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स, वी आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दैट वर्क डन बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वील डिस्कस एज वी मूव फर्दर। मूविंग अहेड, वॉट वी सी इज दैट वेन द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अप, the work done by the gravitational force is negative, but the work done by the person who is lifting the object is positive because he is doing the work. When the object is lowered, which means when you take the object from a certain height back to the ground, now the work done by the gravitational force is positive because the force and the displacement are in the same direction. So whenever you are bringing the object to a lower height from a upper height or an upper point, then the work done by the gravitational force is positive. But the work done by the person who is lowering the object is negative. So with this, we have tried to understand what is work done whenever the force and the displacement are with some angle with respect to each other. So once again, we revise the formula for work, and the formula for work is F D cos theta. F is the force, D is the displacement, and theta is the angle between the force and the displacement. Sometimes the force is not constant, it is variable. मतलब आपका जो बल है वो एक समान नहीं रहता बल्कि बदलता रहता है. In that case, ऐसे situation में जबकि आपका जो force है वो लगातार बदलता जा रहा है, वो constant नहीं है, same नहीं है, what we will do is we will calculate the work done for a small distance. And then we can plot a graph between the force and the displacement. जब हमारी फोर्स एक वेरिंग फोर्स है, एक फोर्स जो लगातार बदलती रहती है, कुछ इस तरह की फोर्स है, और उसके इंफ्लुएंस में हमारा पार्टिकल है, तो हम एक ग्राफ के जरिए एफ और एक्स के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे. जो कर्व हमारे पास आएगा, उस कर्व से जो एरिया कवर किया जा रहा है, दैट एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू द वर्क डन. अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फोर्स वेयर द फोर्स कीप्स चेंजिंग, एक आसान सा एग्जाम्पल जहां पे लगातार आपका बल बदलता रहता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ स्प्रिंग. सो सपोज यू टेक अ स्प्रिंग एंड इन दैट स्प्रिंग यू अटैच a mass to the spring, and from one side the spring is attached to the wall. आपने एक स्प्रिंग लिया तो एक तरफ से दीवार में लगा दिया, और दूसरी तरफ स्प्रिंग के दूसरे कोने पर एक छोटा सा मास अटैच कर दिया. अब जब स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ पर है तो आपका मास वहां रेस्ट पर बना रहेगा। अब आप अगर स्प्रिंग पर जरा सा भी बल लगा दें, जरा सा भी फोर्स लगा दें और स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस कर दें, मतलब कि छोटा कर दें, जैसे ही आप स्प्रिंग को छोटा करेंगे, मतलब आपने स्प्रिंग को एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया एक्स बाय अप्लाइंग द फोर्स, आपने एक फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स को अप्लाई करकर आपने इसमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया। अब इसके इन्फ्लुएंस में स्प्रिंग पहले एक तरफ आगे बढ़ेगा, मतलब कि दीवार की तरफ स्प्रिंग आगे बढ़ा और फिर वहां से स्प्रिंग वापस पीछे आया और दीवार से दूर गया और इसकी वजह से स्प्रिंग में लगातार एक मोशन स्टार्ट हो रहा है, कंप्रेशन एंड इलॉन्गेशन। यहाँ इस केस में लगातार फोर्स बदलता जा रहा है और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक बदलने वाला फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। जब स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ पर था तब फोर्स जीरो था, लेकिन जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं फोर्स उतना ही बढ़ता जाता है। सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द स्प्रिंग इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन। सो दिस एफ द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है और के आपके स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट कहलाता है। अब इस केस में जब भी हम फोर्स लगाएंगे तब आपका स्प्रिंग एक मोशन शो करेगा और उस मोशन के इन्फ्लुएंस में आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और उस ग्राफ की हेल्प से एरिया कैलकुलेट कर आप स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम फोर्स देखें तो अगर फोर्स शुरू में जीरो था और जब स्प्रिंग सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड है तब फोर्स एफ है, तो इन दोनों का मीन लिया जा सकता है। तो हमारा जो फोर्स हो गया मीन फोर्स वो हो गया एफ डिवाइडेड बाय टू। और अब इस एफ डिवाइडेड बाय टू ये जो मीन फोर्स निकल के आया इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करने पर हमारा वर्क डन आ जाता है। तो स्प्रिंग के केस में आपका वर्क डन निकल के आएगा एक बटा दो के टाइम्स एक्स स्क्वायर। आप ये अपनी वैल्यूज डालकर इसको निकाल सकते हैं। सो द वर्क डन बाय अ स्प्रिंग व्हेन इट इज अलाउड टू मूव इज इक्वल टू हाफ टाइम्स के एक्स स्क्वायर
जी,
एंड यू कैन शो दिस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आल्सो। नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट पावर, पावर जिसे हम शक्ति कह रहे हैं। सो व्हेन वी से पावर, द पावर इज डिफाइंड एज रेट एट विच वर्क इज डन। सो वर्क डिवाइडेड बाय द टाइम इज द पावर। व्हेनेवर वी से पावर, राइट, द डेफिनेशन ऑफ पावर इज सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। सो दिस पावर इज नथिंग बट जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड एंड दैट इज नोन एज वॉट। सो द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट एंड इट इज रिटन एज कैपिटल डब्ल्यू। सो दिस पावर इज सिंपली एक्सप्रेस इन दिस यूनिट कॉल्ड वॉट। सम मोर कॉमन यूनिट विच वी यूज फॉर पावर आर किलो वॉट एंड मेगा वॉट। 1 kilowatt इज 10^3 watt एंड 1 megawatt इज 10^6 watt। The dimensions of power, if we have to find the dimension of the power, then the dimension of power, which is nothing but rate of doing work, that is work done per unit time. So, hum work ki dimension dalenge aur usme time ki dimension se divide karenge. Kyunki work ki dimension humne pehle nikali hai, to work ki dimension hai ML2T-2. Aur ab niche ek aur time aa jayega, तो हमारी पावर की डायमेंशन बन गई ML2T-3। मेरे ख्याल से हमारे साथ जुड़े सभी विद्यार्थी साथ साथ पावर की डायमेंशन भी निकाल रहे होंगे। तो पावर की डायमेंशन हो गई ML2T T-3. Now, just like we were using kilowatt hour as the commercial unit of work, in the same way, the commercial unit of power is defined as horsepower. Horsepower is the commercial unit which was basically introduced in the British system. So this horsepower, one horsepower is equal to 746 watts. एक हॉर्स पावर 746 746 वॉट के बराबर है. एंड दिस हॉर्स पावर इज द कमर्शियली यूज्ड यूनिट ऑफ पावर. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वर्क, राइट, दिस वर्क व्हेन वी रिलेटेड टू एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, राइट. So now we are moving on to understand what is this energy. In today's class, we are looking at these terms, the meaning of work, the meaning of power, and what do we mean by energy. So whenever we say energy, the capacity to do work, it's the ability to do work, that is known as energy. So now suppose you have a fast moving car. Now, this fast moving car, if we try to bring it to rest, right, then we have to do some work so that the fast moving car comes to rest. And this work done becomes the energy of the car. So whenever you have an object which is in motion, then the energy due to the motion of that object, due to the velocity of that object, that is known as kinetic energy. So hum jab energy ki baat kar rahe hain, to jo kinetic energy hai, that is the energy due to the motion of the object. There is another kind of energy which is known as potential energy. The potential energy of an object is due to its position or shape of the object. So we classify the energy into these two categories, kinetic energy and potential energy. The energy possessed due to the position of the object. For example, you take a block which is kept on a ground, and now from the ground you lift the object and keep it at a certain height h. Jaisa ki aapke ghar mein aapne ek object ko zameen se uthakar table par rakh diya. अब जब आपने उस ऑब्जेक्ट को टेबल पर रख दिया है, तो इस प्रोसेस में आपने उसको ग्रेविटेशनल एनर्जी उसके अंदर दे दिया, विच बिकम्स द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर वो टेबल वहां से उठा ली जाए, अगर आप उस टेबल को वहां से हटा दें, तो वो ऑब्जेक्ट जो आपने टेबल पे रखा है वो बड़ी तेजी से ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से नीचे आएगा. और अगर जमीन आपकी हार्ड नहीं है, तो वो जमीन पर अपना एक कार्य कर देगा, मतलब जमीन पर अपना एक इम्पैक्ट भी दिखाएगा. सो दैट एनर्जी विच इज ड्यू टू द पोजिशन इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी. सो रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजिशन और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. Now, whenever we say work and energy, they are interconvertible to each other. Work can be converted to energy and energy can be converted to work. यही बात एक बार दोबारा से हम समझने की कोशिश करते हैं. गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी. गतिज ऊर्जा का मतलब है किसी भी वस्तु में जो ऊर्जा उसकी गति के कारण होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं. और ये गतिज ऊर्जा उस वस्तु के मास यानी भार और उसकी स्पीड यानी कि उसकी गति पर डिपेंड करती है. अगर फॉर्मूला की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. इस गतिज ऊर्जा के अलावा उस ऑब्जेक्ट को या उस वस्तु को हम जिस जगह पर रखते हैं उसकी वजह से भी जो उसके अंदर ऊर्जा है उसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाना जाता है. काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की डिटेल्स हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए जो हमने पढ़ा है मैं उसे एक बार दोबारा से आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। शुरुआत में हमने वर्क की बात की है, वर्क का फॉर्मूला हमने किया है F डॉट D, दैट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। उसके बाद हमने थीटा एंगल पर वर्क निकाला, F इंटू B cos थीटा इज इक्वल टू योर वर्क डन। और फिर हमने पावर की बात की है आज की क्लास में, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। आज के इस पूरे डिस्कशन में हमने ये चीजें समझने की कोशिश की। सभी लर्नर्स को नमस्ते, आप अच्छे से अपने फिजिक्स के, भौतिकी के विषयों को समझ पाए। धन्यवाद।